कहाँ कहाँ जो जिन लोगों को जख्मी किया गया था उनको कहाँ पहुँचाया गया?
अच्छा मजीदा, असल में ये 9:20 पे वाक़ आवाज सपूरा चौरंगी के पास मेमन हॉस्पिटल के करीब तकरीबन 9:22 में हमने रिकॉर्ड अपना चेक किया। हमें टेलीफोन मिला मेमन हॉस्पिटल से कि सर बस से फायरिंग हुई है। सूरत हाल बहरहाल वाजे नहीं थी। जब हमारी एम्बुलेंस तकरीबन 5 में वहाँ पहुंची है तो फिर उन्होंने अंदाजा किया कि नहीं सूरत हाल बहुत संगीन है। और उसके बाद जो है मजीद एम्बुलेंस तलब की गई और अंदाजा ये था कि शायद जख्मी ज्यादा होंगे मरने वाले कम। लेकिन फिर जब हमारी वॉलंटियर अंदर गए बस के तो उन्होंने देखा कि तकरीबन जो है वो 70 के करीब लोग होंगे, उनमें से बेशतर जो है या तो वो मर चुके थे या बहुत शदीद जख्मी थे। मैडम जख्मियों को खाना हॉस्पिटल जो है वो पहुंचाया गया, लेकिन तकरीबन ये मरने वालों की तादाद एक मैं आपको बता दूं कि अब 48 हो गई है। 7 शदीद जख्मी थे और ये इसको मैं ये वाकया पहली बार हुआ है कराची में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इस्माइली कम्युनिटी जो है बड़ी पुरमन कमेटी है कराची में, मुख्तलिफ जगहों पे होती है और उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट होती है। अजहर गार्डन इनका अपना एक इलाका है जहाँ से बसें 5 निकलती है।
जी जी
ये
जी ये बताइए कि क्योंकि हमारे पास भी जो इत्तला आई हैं उसके मुताबिक कोई 13 अफराद जो बुरी तरह से जिनको ज़ख्मी किया गया था, लेकिन बताया जाता है कि क्योंकि उनको इमदाद पहुंचाई गई तो अब वो बच जाएंगे। तो आप भी जानते हैं कि कितना ज़रूरी है कि जब इस तरह के वाक़ात हों तो एम्बुलेंसेस उनको हस्पतालों में पहुँचा दें। इसलिए यही सवाल आपसे कि सबसे पहले आप लोग उनको कहाँ ले गए?
हम उनको ले गए मेमन हॉस्पिटल, करीब था, बिल्कुल वहाँ से करीब था, तो साफ नहीं था, कोई ज्यादा दूर नहीं था। वहाँ ले गए, फिर वहाँ से उन्होंने रेफर करना शुरू किया जो शदीद जख्मी थे उनको आगा खान हॉस्पिटल ले गए। आगा खान में उनका ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद जो है मतलब कोई और हॉस्पिटल में नहीं, आगा खान ले गए थे। और फिर जो है हमारे जितना हमने अपनी जो है मॉर्चरी भी भेज दी थी जिसमें 20 डेड बॉडी रखने की गुंजाइश होती है, लेकिन बहरहाल हमारी अपनी 50 एम्बुलेंस वो मौजूद थी। और ये इस अफसोसना ये पहली बार हुआ जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ
जी जी
कि पहले तो बस के बाहर से फायरिंग होती थी तो उसमें जो सामने है वो जख्मी या मर जाते थे, लेकिन ये अंदर दाखिल जो है हमारे वॉलंटियर्स ने कहा कि अंदर दाखिल होके बाकायदा चाहे वो मासूम बच्चे हों औरतें हों या मर्द हो उनके सरों को निशाना बनाया गया।
ये बताइए, हमने ये भी सुना था कि बच्चों को शायद बाहर निकाला गया और बच्चों ने अपने वालदेन को उनके सामने कत्ल होते हुए देखा, इसके बारे में क्या मालूमात है आपकी?
नहीं, हमारी इतना तो ये अभी वहाँ बच्चों की भी डेड बॉडी थी, 26 औरतों की डेड बॉडी है, बच्चे भी है उनमें, ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चों को निकाला गया। बच्चे डर के भाग गए हो या नजरअंदाज कर दिए उन्होंने वो अलग बात है, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा बहिमाना कार्रवाई थी जिसमें उन्होंने मतलब ये कि कोई फर्क नहीं किया।
अच्छा,
न औरतों ने किया ना मर्दों ने।
अच्छा अच्छा जी जी। और हम दिफाई तजिया कार की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो इतलात हैं वो आपको बता दें कि बताया जाता है और रिजवान जमील जो कि कम्युनिकेशंस ऑफिसर हैं खान कम्युनिटी के, उनका ये कहना है कि 43 लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं और 13 क्योंकि उनको हस्पताल पहुंचाया गया है लिहाजा वो उनमें अब कोई ख़दशा नहीं है और नज़र आता है कि वो बच जाएंगे। आप बताइए काज़मी साहब कि जिस तरह के लोग ज़ख्मी थे उनको किस तरह की चोटें आई थी, आपने क्या देखा?
उनको देखिए मैंने आपसे कहा कि मारने वाले जल्दी में थे, उन्होंने निशाना लेके जो सुबह का वक्त था 9 का तो बस भी बहुत बड़ी भी थी, 70 के करीब लोग थे, उन्होंने फायरिंग की है जहाँ मौका मिला, उन्होंने सरों को भी निशाना बनाया। और लोगों के मतलब मुख्तलिफ हिस्सों को भी जो है वो टारगेट किया है, और ये सारा ऑपरेशन उनका जो है वो जो एनी साइजिंग में उनका कहना है कि 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करके वो फरार हो गए।
अच्छा,
तो उसमें उन्होंने मतलब ये कि कोई वो नहीं किया है, जिनको बोलिए बहरहाल जिनको सरों वरों में मारे गई तो वो तो बचे नहीं, लेकिन बाकी जिसम के दूसरे हिस्सों में जो लगी थी उनके बचने का जैसे आपने बताया आसान में। लेकिन एक बात की फिर मैं वजात करूँ कि मरने वालों की तादाद 46 है, वो डेड बॉडी चूंकि हमने खुद उठाई है।
अच्छा।
कुछ डेड बॉडी है डायरेक्ट वारिसान ले गए अपने घरों पे, वो आ गए थे वहाँ पे।
अच्छा,
वहाँ से करीब नजर गार्डन।
अच्छा अच्छा जी, और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के जो फौजी चीफ हैं जनरल राहिल शरीफ, उन्होंने भी अपने गैर मुल्की दौरों को कैंसिल कर दिया है। वो श्रीलंका जाने वाले थे और गालिबन इस वक्त कराची में कोई मीटिंग हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की। उसके अलावा उन्होंने खान को भी टेलीफोन करके ताज़ियत की है उनके साथ, और उसके अलावा जो अमरीकी सफ़ीर हैं रिचर्ड ओल्सन, उन्होंने भी टेलीफोन करके ताज़ियत की है, और उनका ये कहना है कि अमरीका हर तरह का तावुन देने को तैयार है ताकि इस तरह के वाक़यात आइंदा ना हों। आप बताइए, हम अपने दिफाई तजिया कार की तरफ जाते हैं, लेकिन कुछ आप हमें इशारा दीजिए काज़मी साहब कि जो हमलावर थे उनका पीछा किया गया, क्या पुलिस ने उनको देखा, क्या पता चला है कि वो कौन थे?
ये देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं नफीसा, थोड़ी शायद बात तवील हो जाए कि अव्वल तो मैं राहिल शरीफ साहब को, पाक फौज को और रेंजर को सलाम पेश करता हूँ कि कराची में अब टारगेट किलिंग के वाकयात बहुत कम हो गए। वहाँ वजीरिस्तान या और जगहों में जो ऑपरेशन हो रहा है वहाँ से लोग जो है वो जिनकी जाने बचती है भाग के कराची पहुँच रहे हैं। और सफूरा गोड शायद आपको याद हो कि जो एयरपोर्ट पे हमला हुआ था वो जो है क्रैकमन की उस बैग जो है वो भी सफूरा गोड से वहाँ पहुँचे थे। सफूरा गोड बेसिकली जो है वो इस तरह की कार्रवाइयों का एक मरकज बना हुआ है, और मैं समझता हूँ कि इसमें कराची में टारगेट किलिंग बहुत कम हो गई थी। बहुत अच्छे के बाद ये वाकया हुआ है और उस कम्युनिटी को निशाना बनाया गया जो बहुत पुटरमन कम्युनिटी।
अच्छा जी, आप हमारे साथ रहें इसलिए कि हमारे साथ इस वक्त स्काइप के ज़रिए दिफाई तज्ज़िया कार ब्रिगेडियर मोहम्मद साद हैं, और ब्रिगेडियर साद आपको खुश आमदेद।
बहुत मेहरबानी जी।
तो आप भी जानते हैं कि ये कहा जाता है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था, खुफिया मालूमात ना होने की वजह से ये हौलनाक वाकया हुआ। आप इसको किस तरह देखते हैं, खुसूसन जब आपके भी इल्म में है कि मेमन कम्युनिटी पे पहले हमला हुआ था, आपका क्या ख्याल है कि इस्माइली कम्युनिटी पर किसी हद तक जो है सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हौलनाक वाकया पेश आया है?
देखें जी, इंडिविजुअल सिक्योरिटी देना तो स्टेट नहीं कर सकता, कोई स्टेट पे नहीं कर सकता, तो जो किसी को मारना चाहे वो मार सकता है। लेकिन इसकी अगर आप डायमेंशन देखें इस पूरे हमले की, वो इतनी पेचीदा हमला है और इतने बड़े सतह पे हुआ है कि इसके सिग्नेचर्स आने शुरू हो जाते हैं इंटेलिजेंस को। तो जब सिग्नेचर्स आते हैं तो फिर वो देखना शुरू कर देते हैं कि किधर जा सकता है, क्या है, कौन है, तो उसके ऊपर इंटेलिजेंस का एफर्ट जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत बदकिस्मती से मेरे ख्याल में अगर आप ये देख रहे हैं जिसमें ये प्रोफेसर्स मारे गए, जिसमें सबीन महमूद को कत्ल किया गया, उसके बाद ये वाला सानहा आया, इसमें से किसी को भी इंटेलिजेंस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। बाकी तो स्टेट अपरेटस वहां पर फेल हो गया है, स्टेट गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट नहीं करती है वो सिवाय करप्शन के और नाहली के जिसके वो आइकॉन्स हैं, बाकी तो उनके पास नहीं है। इस फौज
जी हम ब्रिगेडियर साद को लेते हैं, इस वक्त वो स्काइप के ज़रिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग भी जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं इसमें मुफ्त कॉल करके शरीक हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनवार काजमी हैं जो कि ईदी के तर्जुमान हैं और ब्रिगेडियर मोहम्मद साद हैं जिनके साथ हमारा कनेक्शन अभी ड्रॉप हुआ, लेकिन उनको हम दोबारा लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर आईडी ब्रेक लेते हैं। जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं आज जो कराची में वाकया हुआ है और इस्माइली बरादरी पर खौफनाक हमला हुआ है, इसके हम मुहरिकात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम पता कर रहे हैं कि क्या वजह है कि इतना बड़ा हमला कामयाब हो सका। इस वक्त बताया जा रहा है कि हमारे साथ ब्रिगेडियर मोहम्मद साद दोबारा लाइन पर हैं। जी ब्रिगेडियर साद, आपसे बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। ये बताइए कि आज अमेरिका ने भी कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ तआवुन करने को तैयार है ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा पेश ना आए। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका से तआवुन करके क्या पाकिस्तान अपनी इंटेलिजेंस बेहतर कर सकता है?
मेरे ख्याल में इसमें किसी से भी मदद लेना, मेरे ख्याल में इसमें कोई शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास मतलब है कि इंटेलिजेंस नॉलेज की तो कमी नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस इक्विपमेंट की, जैसे मैं सिग्नेचर की बात कर रहा था कि चैटर शुरू हो जाता है, टेलीफोन के ऊपर बातचीत शुरू हो जाती है, तो ये वाली टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए हमें अमरीका के साथ जो है वो तावन बहुत ज़रूरी है। और इस तावन के नतीजे में मतलब है कि हम ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे सानेहों का आप मतलब है कि पहले से हम इनको रोक सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक हम बहुत पैरानॉइड हो गए हैं। हर फॉरनर हमें एक एजेंट नजर आता है, हर फॉरनर हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में से पता नहीं क्या चोरी करने, यहाँ पर क्या खजाने हैं, यहाँ पर चोरी करने आया हुआ है। आप किसी फॉरनर से मिले आपके पीछे इंटेलिजेंस वाले लग जाते हैं कि जैसे आपने मुल्क के उनके सीक्रेट्स जो हैं वो उनके हवाले कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इससे भी बालतर होना पड़ेगा। हमें खतरा जो है ना वो मगरब से नहीं है, हमें खतरा इस ये जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी इसमें आप देखेंगे कि लोग इनको जो है ना ऐसे वो करेंगे कि इसमें बैरूनी हाथ है। हाँ जी बिल्कुल, बैरूनी हाथ हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बैरूनी ममालिक या जो भी आपका दुश्मन है वो अगर आपके अंदरूनी हालात कमजोर होंगे और वहां पर लोग बिकने के लिए तैयार होंगे तो ये हमारी कमजोरी है, तो वो दुश्मन उससे इस्तेफादा करेगा। हमें पहले चाहिए कि हम अपने अंदरूनी मामलात के ऊपर फोकस करें, बैरूनी हाथ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा जब अंदर कोई बिकने के लिए तैयार नहीं होगा। हम हिंदुस्तान में कोशिश करते हैं ना तो वहां पर नहीं मिलता है, और इसमें जो मुंबई वाला वाकया है वो उसमें हमने पाकिस्तानी इस्तेमाल किए इन लोगों ने, क्योंकि वहां पर आपको लोग नहीं मिले और वो पकड़े गए और हमारी बदनामी हो गई वहां पर।
जी बिल्कुल, और जैसे कि आप ही जानते हैं कि बैनुल अक्वामी सतह पर इस वाक़े की वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, आज प्रिंस करीम आगा खान ने भी ताज़ियत की है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी कम्युनिटी के बहुत बड़ी तादाद में लोग कराची में रहते हैं, और उसके अलावा आपने भी देखा कि रिचर्ड ओल्सन ने भी ताज़ियत की है। आप जानते हैं कि इस्माइली कम्युनिटी ने काफ़ी कुछ मुआशी सतह पर पाकिस्तान की मदद की है, उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं गिलगित में, नॉर्दर्न एरियाज़ में। आप क्या समझते हैं इस वाक़े के बाद क्या उनकी सरगर्मियां पाकिस्तान में कुछ कम हो जाएंगी?
पहले से अगर आप इसको देख रहे हैं कि मुल्क के बाकी हिस्सों जैसे पेशावर में मैं जानता हूँ वहाँ पर से इस्माइली निकल गए हैं, एक बहुत बड़ी इस्माइली कम्युनिटी थी पेशावर में, खासकर ये जो सोने का कारोबार था, ज्वेलर्स वगैरह थे, ये थे कुछ ट्रेडर्स भी थे, वो पिछले 20-25 साल में पेशावर से निकल गए हैं। इस तरह अब बाकी शहरों में से कराची में इनकी कॉन्सेंट्रेशन रह गई थी, ये कराची से निकल जाएगी। ये सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये सरमायाकारी करते हैं पाकिस्तान में, ये ट्रेडिंग करते हैं, ये कॉमर्स करते हैं, और इससे पाकिस्तान को अगर ये कराची में से इनको निकाला जाए हमें समझ नहीं आएगी कि कराची में ये जो कराची को जिसको हम समझ रहे हैं कि इतना बड़ा शहर है और पाकिस्तान को इतने रेवेन्यूज दे रहा है, अगर ये लोग पाकिस्तान से निकलना शुरू हो गए तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही संगीन जो मुआशी और इकतसादी वो है सूरत हाल, वो कराची में हमें उसका सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान हम बहुत गैर संजीदा कर रहे हैं। आज आप प्राइम मिनिस्टर को देख रहे थे, बड़े शर्म की बात थी कि यहाँ पर 40-45 लोगों की शहादत हो गई और वहां पर वो दिखा रहे थे कि रोटियां खा रहे हैं, खाने खा रहे हैं। कम से कम अगर आप खाते भी हैं तो उसको टेलीविजन पर नहीं आना चाहिए था। ये मेरे ख्याल में जो मैसेज हम मुल्क को दे रहे हैं वो बहुत गलत है। ये बहुत बड़ा सानिया है और पाकिस्तान को इससे बहुत नुकसान पहुंचेगा, इसके स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स होंगे, इसको पेशावर स्कूल से मैं ज्यादा खतरनाक समझता हूँ पाकिस्तान के लिए।
वाकई वाकई ब्रिगेडियर साद, आपके इल्म में है कि इस्माइली कम्युनिटी जो है वो अपने लोगों का बहुत ख्याल रखती है। हमने रابطہ किया था रिजवान जमील से जो कि कम्युनिकेशंस ऑफिसर हैं इस्माइलीज के, और उन्होंने बताया कि अब पूरी कम्युनिटी इस वक्त खान हॉस्पिटल में है और तीमादारी कर रही है उन लोगों की जो कि ज़ख्मी हैं। इसी हवाले से हम अनवार काजमी की तरफ जाते हैं जो कि ईदी के तर्जमान हैं। काजमी साहब, ये बताइए कि हमें भी मालूम है कि बहुत सारी जानें बच गईं क्योंकि कम्युनिटी ने अपने ही लोगों का ख्याल किया, इस हवाले से आप कुछ बताएंगे हमें?
देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त जो है जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि इस्माइली कम्युनिटी के बहुत बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट पर चल रहे हैं और उसका फायदा सिर्फ कम्युनिटी को देंगे बल्कि आप लोगों को भी मिलता है। हॉस्पिटल सिर्फ कम्युनिटी को नहीं देखता बल्कि और लोगों को भी देखता है। तो कराची मेरा अपना ख्याल है, अगर देखा जाए तो इस्माइली कम्युनिटी का सबसे बड़ा शहर है ये। तो कराची के बेशतर इलाकों में इनकी आबादी है और बहुत ही पुरेमन लोग होते हैं, कारोबारी लोग हैं, इनमें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है और कम्युनिटी में इतना नहीं है। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि एक सारी कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने भी ये किया है वो पाकिस्तान को हर कीमत पे गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, जो बुनियादी बात है। और ये जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, ये हमारे बाहर से कोई मसला नहीं है, अंदरूनी जो साजिशें चल रही है वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है।
जी 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 हम ब्रिगेडियर साद को अनकरीब खुदाफिज करेंगे, लेकिन ब्रिगेडियर साद आपने कहा कि जो सियासी क़यादत है उन्होंने वो संजीदगी जो है ज़ाहिर नहीं की, लेकिन साथ साथ हम जानते हैं कि जनरल राहील शरीफ जो हैं उन्होंने अपना गैर मुल्की दौरा कैंसिल किया और कराची में इस हवाले से उन्होंने मीटिंग भी की। आप क्या समझते हैं, जिस तरह आपने कहा कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे से भी बड़ा है, इसके बाद कोई फ़ौज नया डायरेक्शन लेगी?
बिल्कुल, अभी तो कुछ करना पड़ेगा। जो अभी तक कराची में सूरत हाल चल रही है वो कि वजीर आला जो 85 साल के हैं वो वजीर आला नहीं है, उसके पीछे जितने भी वजीर हैं वो अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं और एक पैसे बनाने की एक मशीन है जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट है और ये लोग पैसे बना रहे हैं। कराची में पानी को लोग तरसते हैं, बूंद बूंद के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग और इनको कोई फिक्र नहीं है। पिछले 8-10 साल से ये वहां पर हुकूमत कर रहे हैं, इनको कोई नहीं है। अभी मतलब है कि इसके अभी मुझे एक एक्सट्रीम स्टेप तो नहीं कि जो गवर्नर रूल लगाया जाए, मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन एक पाकिस्तान के आर्टिकल अभी आखिरी हम उस पर आ गए हैं, ये होना नहीं चाहिए लेकिन हम आ गए हैं क्योंकि सिविल हुकूमत जो है वो बिल्कुल मफलूज हो गई है, वो पैरालाइज्ड है इस वक्त। वो है आर्टिकल 147 है, आर्टिकल 245 है, उसमें जो मिलिट्री कमांडर होता है और उसमें रेंजर का जो मिलिट्री कमांडर है उसको लगाया जा सकता है, वो कराची के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो जाते हैं, वो वजीर आला को रिपोर्ट करते हैं, बाकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो जो मिलिट्री कमांडर होगा वो उसको रिपोर्ट करेगा। तो मेरे ख्याल में फौज को नहीं लाना चाहिए, रेंजर्स को फिलहाल डालना चाहिए क्योंकि वो भी फौजी ऑफिसर हैं। 147 के तहत अगर आप 245 नहीं डालना चाहते हैं, 245 में सिर्फ ये फर्क है कि उसमें हाईकोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन खत्म हो जाता है। 147 में आप लेके आए कराची के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं, चाहे वो डीसीज हैं, चाहे वो एसएसपीज हैं, बाकी पुलिस वगैरह जितने भी हैं वो सारे रिपोर्ट करते हैं मिलिट्री कमांडर को। मेरे ख्याल में ये पहला स्टेप अभी हमें लेना पड़ेगा और इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत के साथ अगर हम इस तरह चलते रहे तो ये जो कत्ले आम इस वक्त कराची में जारी है, चाहे वो पुलिस के एहलकार को एक एक चुन चुन के मारना या इस तरह जो इस्माइली कम्युनिटी के साथ ये सानहा हुआ है आजकल ये 40 का, ये और ज्यादा होगा।
अच्छा, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे दिफाई तजयकार ब्रिगेडियर मोहम्मद साद, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। अनवार काजमी, आप हमारे साथ रहें। जिस तरह से आपने सुना ब्रिगेडियर साद को और उन्होंने जो सिविलियन हुकूमत है उसकी नुक्ताचीनी की, आप उससे मुत्तफिक हैं?
नहीं, मुत्तफिक बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो कराची या सिंध के अंदर रेंजर ने काम किए हैं वो बेमिसाल है। इन टारगेट के ये एक वाकया हुआ है, वो हमारी अपनी जो है इंडियनसी का काफी हम कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है सूरत हाल कराची की बहुत बेहतर हुई है अगर इस वाकये को निकाला जाए, और उसका सारा क्रेडिट जो है वो फौज को और रेंजर को जाता है। और बाकी सियासतदान तो सिर्फ बयान भी हद तक है, वो कहते हैं कि तहकीकात होगी तहकीकात होगी, वो तो बिल्कुल मैं कह रही साहब की बात सही है।
और हम हमारे इल्म में भी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसकी एक शाख जो है जंदुल्ला, उन्होंने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। आप कराची के रहवासी हैं, आप उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, आप बता सकते हैं कि सफूरा गोठ और इस तरह के जो गोठ हैं सुपर हाईवे पे भी जो हैं बस्तियां, इसमें क्या नज़र आता है कि टीटीपी के स्लीपर सेल्स किस हद तक जो हैं अभी तक मौजूद हैं?
बिल्कुल मौजूद है, रेंजर ऑपरेशन कर रही है, रेंजर मार रही है, ये कर रही है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो इस्माइली कम्युनिटी के साथ या बस में हुआ है, अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में बिल्कुल इसी तरह के वाकयात हुए हैं।
जी
उन्होंने जायरीन की पास जा रही थी, उसको रोका, अंदर दाखिल हुआ, उनको मार दिया। या तुर्बत में 20 मजदूरों को जो बेचारे मजदूरी के लिए डैम पे वहां गए थे, बस को रोक के बस के अंदर जाकर उन्होंने चुन चुन के मारा। तो ये जो स्टाइल है बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि सेम वही है जो जिंदा कर रही है। उसमें आप अगर बलूचिस्तान के अंदर होने वाली ये कार्रवाई देखें और कराची में, तो बिल्कुल मुमासले नजर आएगी आपको, बिल्कुल फुल फर्क नहीं है उसमें।
जी, और बलूचिस्तान में तो खैर हजारास की जो हैं मर्डर्स वो खासे हद तक कम हो गए, लेकिन कराची का ये जो बड़ा वाकया हुआ है इसके बाद तवक्कु की जा रही है कि कुछ इकदाम उठाए जाएंगे। और इस हवाले से हम अनकरीब जाएंगे अपने एक तज्ज़ियाकार की तरफ जो इस वक्त पेशावर में हैं। आप चंद मिनट और रहें हमारे साथ काजमी साहब, आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर आईडी ब्रेक लेते हैं।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, और हम अपने बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कराची में एक खौफनाक दहशतगर्द हमला हुआ है इस्माइली बरादरी पर, और जिसमें दर्जनों अफराद हलाक हुए हैं, कई जख्मी हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पेशावर से मुश्ताक यूसुफजई ने, और उम्मीद है कि स्काइप के ज़रिए उनसे हम बात कर सकते हैं। मुश्ताक यूसुफ जई, आपको खुश आमदेद।
मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। आज तो हम आपको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, और ये बताएं कि जो इत्तलात हमारे पास आई हैं वो ये है कि जंदुल्ला ने कहा है کہ جو اسماعیلی برادری ہے ان پر حملہ انہوں نے کیا تھا. آپ بھی جانتے ہیں جب بھی کوئی بڑا دہشت گرد واقعہ ہوتا ہے تو جنگجو اس کی جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے. یہ جو آج انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے اس میں کوئی صداقت نظر آتی ہے؟
جی بالکل, اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ جس میں عام لوگ یعنی ہتھے لوگ نشانہ بنتے ہیں, تو جو بڑی تنظیمیں ہیں, جو بڑی ملٹنٹ تنظیمیں ہیں, وہ پھر ذمہ داری لینے سے کتراتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ یہ جو ایک بندہ ہے, مسٹیریس کریکٹر ہے احمد مروت, یہ پھر آگے بڑھتے ہیں اور یہ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں. تو آج بھی جو کراچی میں واقعہ پیش آئے ہیں جس میں اسماعیلی کمیونٹی کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, تو تھوڑی دیر کے بعد احمد مروت سامنے آئے اور انہوں نے کچھ جو میڈیا کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے. لیکن جو میں نے اپنے طور پہ تھوڑا بہت اس کے اوپر کام کیا ہے, جو میری آگے پیچھے بات ہوئی ہے کچھ طالبان تنظیمیں جو ہے ان کے ساتھ, تو کوئی بھی اس بندے کے بارے میں, احمد مروت کے بارے میں یا ان کی تنظیم جس کا نام لے رہے ہیں جند اللہ, زیادہ جانکاری نہیں رکھتے, زیادہ ان کے پاس معلومات نہیں ہیں. اور اس طرح کے ایک کریکٹر ہوا کرتے تھے میرعلی شمالی وزیرستان میں پہلے, اور جب طالبان کوئی کاروائی کرتے تھے یا عام دھماکہ ہو جاتا تھا اس میں عام لوگ مر جاتے تھے, تو طالبان یا ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے پھر انکار کر دیتے تھے. تو یہ احمد مروت آگے بڑھتے اور ذمہ داری قبول کرتے. پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ تحریک کے لوگ ان سے تنگ آ گئے تھے, ان سے خوش نہیں تھے, اور پھر باقاعدہ انہوں نے ان کی گرفتاری کا حکم بھی دیا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمیں ڈیفیم کر رہے ہیں, ہماری بدنامی کا باعث بن رہے ہیں, پھر یہ رپوش ہو گیا تھا. اب جو میری معلومات ہے جس تنظیم کا یہ نام لے رہا ہے جند اللہ, یہ اصل میں ایگزسٹ نہیں کر رہا, یہ تنظیم یہاں پہ باقاعدہ کام نہیں کر رہا. جو اہم تنظیم ہے جند اللہ, ابھی اس کا نام تقریباً تبدیل ہو گئے ہیں میری معلومات ہے, اور اس کا نام ہے جیش العدل, وہ ایران بیسڈ ہے, وہ تشیع کے خلاف ہے. یہ جو جند اللہ بنائی گئی تھی تحریک طالبان پاکستان نے کراچی میں کچھ عرصہ پہلے, تو ان کو کچھ اہداف دیے گئے تھے, ان کے وہاں پہ ان کے نمائندے تھے, لیکن پھر زیادہ ان کے لوگ یا تو مارے گئے, کچھ گرفتار ہو گئے, پھر تحریک طالبان پاکستان کی لیڈرشپ نے خود اس کو باقاعدہ ضم کر دیا تھا تحریک میں, اور ان کے جتنے بھی لوگ تھے وہ تحریک طالبان پاکستان کے زیر کمان کام کرنے لگے کراچی میں. تو اب جو میری معلومات ہے تو یہ تنظیم اتنی پال نہیں ہے, اتنا بڑا نیٹورک نہیں ہے جند اللہ کا کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کے لیے کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہے, اسپیشلی پھر اس طرح کے واقعات کرنا, اس طرح کے حملے کرنا ان کے لیے مشکل ہے. تو میرا نئی خیال, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید یہ ایک فرضی کریکٹر ہے, اور کبھی کبھار اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے یا شاید اس کی خود بھی خواہش ہے تو یہ آگے بڑھتے ذمہ داری قبول کر لیتے. کئی مواقع پہ ایسا بھی ہوا ہے کچھ بڑے حملے ہوئے ہیں اور باقاعدہ تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, لیکن اس سے پہلے احمد اللہ بھی ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. آج تک اس تنظیم کے بارے میں, اس کے سربراہ کے بارے میں, ان کے لوگوں کے بارے میں, یہ کہاں بیسڈ ہیں, ان کے لوگ کہاں پہ ہیں, اس تنظیم کا سربراہ کون ہے, یہ آج تک جو ہے ہمیں پتہ نہیں چل سکا.
مشتاق یوسف زئی, آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کے جو سفیر ہیں پاکستان میں رچرڈ اولسن, انہوں نے بھی کہا ہے پاکستان سے کہ اگر وہ چاہیں تو امریکہ پاکستان کی مدد کر سکتا ہے تفتیش میں. یہاں کسی حد تک داعش پر بہت زیادہ شبہ کیا جا رہا ہے اس واقعے کے حوالے سے نہیں, لیکن کیونکہ داعش اس وقت مشرق وسطی میں خاصا ایکٹیو نظر آتا ہے, اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ افغانستان میں بھی آج ایک واقعہ ہوا ہے ہلمند صوبے میں جہاں علماء کونسل پر حملہ ہوا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ داعش کی موجودگی ممکن ہے کہ اس سے منسلک ہو؟
دیکھیں, وہ لوگ جو کہ اپنے اپنے تنظیموں میں اپنے اپنے سربراہان سے خوش نہیں تھے, پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ درجنوں ملٹنٹ تنظیمیں ہیں, اور وہ لوگ بالکل خاموش ہو چکے تھے, وہ ایک سائٹ پر بیٹھ گئے تھے. تو اب جب داعش نامی تنظیم سامنے آ گئی, اور ان میں تمام تر وہ لوگ ہیں کہ یا تو یہ پہلے افغانستان میں یا پاکستان میں جو طالبان تنظیمیں تھیں ان کا حصہ رہی ہے, तो इसलिए उन लोगों ने सबसे पहले उन लोगों से रابطے कायम किए जो कि अपने लोगों से खुश नहीं थे, उनकी पॉलिसीज से खुश नहीं थे, तो उन्होंने उनको राजी किया, उनको पाल कर दिया। तो एक हद तक तो ये बात सही है कि पाकिस्तान में स्पेशली पाटा में जो कबाई इलाके हैं यहाँ पर और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में इन लोगों को कभी कामयाबी हुई है, मतलब इन्होंने रिक्रूटमेंट की है और उन नाराज़ लोगों को अपने साथ मिलाया है। अफगानिस्तान में कुनल, नूरिस्तान, नंगहार ये ऐसे इलाके हैं कि यहाँ पर सलफी जो मसलक के लोग हैं जिसे और प्याम में अहले हदीस भी कहा जाता है, तो वो इनका असर रसूख इन इलाकों में ज़्यादा है। तो उन सूबों में इन्होंने भी इन लोगों को अपने साथ मिलाया है, लेकिन अब ये इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, इनके पास अब इतने सारे वसाइल नहीं हैं, ये एक फेज से गुजर रहे हैं, तंजीम साजी ये कर रहे हैं, वसाइल इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन अब भी इनके लोग जो हैं वो पहाड़ों में रिपोश है, वो जो खैबर एजेंसी का दूरअफ्ताद इलाका है तिरा वहाँ पर है, जो नूरिस्तान के इलाके हैं कुनड़ है वहाँ पे है, बाकायदा इन्होंने बड़े बड़े हमले शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि शहरों के अंदर सिल बनाना, लोगों को ट्रेन करना, इनको वसाइल फराहम करना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। कराची में, कराची चूँकि बहुत बड़ा शहर है और वहाँ पे मदारिस भी बहुत हैं, और जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में जो मिलिटेंट तंजीमें हैं लोग हैं, इनका कराची से किसी न किसी हद तक ताल्लुक रहा है, जो वहाँ में मदारस है ये वहाँ के तकरीबन पड़े हुए हैं। अच्छा। और अब भी जब भी जाते हैं तो कराची में रहते हैं, तो ये ज़्यादातर पे इनका इंसार होता है, कराची से इनको ज़्यादा वसाइल मिलते हैं, पैसा मिलता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि दाइश अभी तक जो है इस काबिल हो इतना बड़ा हमला कर सके, लेकिन देखिए इनके तो लोग हैं और कराची में आपको पता कि अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा हमला करना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन दाइश जैसी तंजीम के लिए कि अभी वो सर उठा रही है, तंजीम साजिश से गुजर रही है, तो शायद इन्होंने किया हो। अलबत्ता एक ख़तरा तस्वर किया जाता है कि अगर इनको लोग मिल जाते हैं, इनको स्पेस मिल जाती है, इनके हाथों में वसाइल आ जाते हैं, तो फिर इस तरह की कार्रवाई वो कर सकती है।
मुश्ताक यूसुफ़ ज़ई, आप भी जानते हैं कि अगर खुफिया मालूमात ना हो तो इस तरह के हमले होते रहते हैं। अभी आपके भी इल्म में है कि जनरल राहिल शरीफ अफ़गानिस्तान गए थे और इस वक्त अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का तावुन बढ़ रहा है, आप क्या समझते हैं कि अगर ये तावुन बढ़ा तो किस हद तक पाकिस्तान अफवाज कामयाब रहेगी ताकि इस तरह के हमले ना हों?
देखिए ये तो मेरे ख्याल में एक तकाजा है वक्त का, और पहली मरतबा पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप और सियासी लीडरशिप ने ये बात महसूस की है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के ताउन के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी ताउन के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। तो ये कम अज़ कम यहाँ पर एक बात महसूस की गई है, और ये भी हम पहली मरतबा देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप ये एक पेज पर है, एक साथ है, और ये अफगानिस्तान जाके उनसे मिलते हैं, लेकिन जो कुछ होना चाहिए जो ग्राउंड पे नज़र आए, मेरे ख्याल में तावन अभी तक दोनों ममालिक के दरमियान, ख्वा वो सियासी मैदान में हो ख्वा वो फौजी मैदान में हो, वो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा, उस हद तक नहीं पहुँच पाया है, और शकुकुश बात अब भी है, फासिले अब भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अफगानिस्तान से तआवुन हासिल करने से पहले हमें अपनी कमजोरियों और अपनी नाकामियों को भी देखना होगा। देखिए हमारा जो पाटा है, कबाई इलाके हैं जो सात कबायली इलाकों पे ये इलाका है मुनासर, बाजौर, मोमन, खैबर एजेंसी, औरंगज़े, कुर्रम, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, तो एक ऐसे इलाके हैं कि अब भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर पाकिस्तानी स्टेट का जो रिट है वो बहाल नहीं हो सका है। अब भी कुछ इलाके, मतलब बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पे तालिबान तंजीमें हैं, मिलिटेंट तंजीमें हैं, स्पेशली खैबर एजेंसी में, शुमाली वजीरिस्तान में, जनूबी वजीरिस्तान में, औरंगज़े में, अभी तक बहुत से इलाके ऐसे हैं कि वहाँ हमारे जो फिजिकल प्रेजेंस है हमारी हुकूमत की, हमारे स्टेट की, वो कायम नहीं है। तो जब ये इलाके हमारे तसल्लुत में आ जाते हैं, वहाँ पाकिस्तान की जो रट है वो बहाल हो जाती है, اور اس کے بعد بھی پاکستان کے اندر اس طرح کی کارروائیاں ہوں, عملے ہوں, میرے خیال میں پھر جواز بنتا ہے کہ ہم جا کے افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے, ان کے جو لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں. لیکن یہ بھی تعاون پھر بھی ضروری ہے کیونکہ ایک پورس بارڈر ہے, جب ان کے خلاف یہاں کارروائی کرتے ہیں تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ کوئی فورس نہیں ہے, بہت لمبی سرحد ہے, ساری پہاڑی علاقے ہیں, تو یہ دونوں ممالک کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. میرے خیال میں دونوں ممالک کو یہ چاہیے کہ بات کو محسوس کرے کہ کسی بھی ایک ملک میں دوسرے ملک کے تعاون کے بغیر امن جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکے گا.
بالکل جی مشتاق یوسف زئی, آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ جو اگلا موضوع ہے اس کے حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ جملے کہیں. آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ ایک آرٹیکل لکھا گیا یہاں امریکہ میں اور اس کے بارے میں بہت کچھ بحث ہو رہی ہے امریکی میڈیا میں. یہ ایک مشہور امریکی صحافی ہیں سیمور ہرش, انہوں نے ایک آرٹیکل پچھلے دنوں لکھا جو خاصا جو ہے مقبول بھی ہوا اور متنازع ہوا, کیونکہ یہاں وائٹ ہاؤس نے بھی اس کی تردید کی اور پاکستان سے بھی ایک طرح کی تردید آئی. آپ کی بھی ہم رائے سننا چاہتے ہیں اس آرٹیکل کے بارے میں. سیمور ہرش نے جو لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ تھا کہ پاکستان کے جنرل کیانی اور جنرل شجاع پاشا کو امریکہ کے اس مشن کے بارے میں علم نہیں تھا جو کہ اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے لیا گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے اس دعوے کے بارے میں؟
جی بالکل, یہ آرٹیکل میں نے خود پڑھا ہے اور دیکھیے ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مطلب انہوں نے جو اپنی ساری معلومات ہے وہ ایک سورس سے ایٹریبیوٹ کیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں اس سے بڑے بڑے واقعات پیش ہوئے ہیں, کمیشن بنتے ہیں, اس پر بے تحاشا پیسہ خرچ ہوتا ہے, لوگ پھر انتظار کرتے ہیں کہ جس کمیشن کی رپورٹ ہے وہ سامنے آ جائے گی. اب جو سیمور ہرش کی آرٹیکل ہیں, ایسے پہلے بھی جتنے آرٹیکل چھپے ہیں, اس طرح کی ون سائڈڈ معلومات آئی ہے جن سے مزید شک و شبہات بڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اور میرے خیال میں اس کی ذمہ داری پاکستانی اسٹیٹ, پاکستانی لیڈرشپ پر آتی ہے کہ جو ابتباد کمیشن بنی تھی, انہوں نے اتنا بڑا کام کیا, اتنے سارے لوگوں کا انہوں نے انٹرویو اکٹھے کیے, تو کم از کم اگر وہ رپورٹ منظر عام پر آ جاتی, وہ پبلش ہو جاتی, پبلک میں آ جاتی, تو کم از کم آج یہ موقع نہ ہوتا. اب جو بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں تو لوگ اس پہ کم از کم کسی حد تک یقین کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سچ نہیں ہے, انہیں سچ کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے, پوری قوم کو پتہ نہیں ہے, پوری دنیا کو پتہ نہیں ہے. تو جب تک یہ رپورٹ سامنے نہیں آ جاتی اور لوگوں کو صحیح معلومات نہیں مل جاتی, میرے خیال میں جو کچھ بھی کہا گا اس حوالے سے, اس ریٹ کے حوالے سے, تو اگر وہ ون سائڈڈ ہو, اس میں جھوٹ بھی ہو, اس میں تھوڑا بہت مچ مسالے بھی ڈالا ہو, تو لوگ اس کے اوپر یقین کر لیں گے. وجہ یہ ہے کہ سچ نہیں ہے, اور سچ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کمیشن بنے ہیں, رپورٹس تیار ہوئے ہیں, لیکن پھر وہ رپورٹ جو ہے وہ ایک الماری میں رکھ جاتے ہیں, وہ پھر عام لوگوں کے لیے پبلک نہیں کیے جاتے. اس لیے یہ تو ابھی میرے خیال میں پہلے موقع نہیں ہے, اس کے بعد بھی شاید اور لوگ کل اٹھیں گے, اور بھی آرٹیکل آئے گی, میں مزید بھی انکشافات ہوگی.
مشتاق یوسف زئی, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے لطیف آفریدی نے, جنہوں نے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شکیل آفریدی کی وکالت بھی کی تھی. اور آفریدی صاحب آپ کو خوش آمدید.
السلام علیکم, آپ کیسے ہیں, خیریت ہے؟
جی جی تھینک یو, بہت کوشش کے بعد آپ ہمیں ملے ہیں, اور ہمارے ساتھ مشتاق یوسف زئی بھی ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں, پشاور میں ہوتے ہیں. آپ سے ایک آرٹیکل جو لکھا گیا تھا سیمور ہرش کا, جو امریکن صحافی ہیں, اس کے حوالے سے آپ کا جو ہے رد عمل ہم سننا چاہیں گے. سیمور ہرش نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ جنرل کیانی اور جنرل شجاع پاشا کو امریکی مشن کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس دعوے کے بارے میں؟
تو وہ بڑا ذمہ دار جرنلسٹ ہے, صحافی ہے, اس لیے اس نے جو دعویٰ کیا ہے, اگرچہ جنرل پاشا کی تردید تو میں نے دیکھ لی ہے, لیکن کیانی صاحب نے ابھی تک اس کی تردید نہیں کی, مجھے میرے علم میں نہیں ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی فضا میں اتنا کے اندر اتنے ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں دے انٹروڈ ان پاکستان's ٹیریٹری اور وہ آ کے پھر وہاں سے سب کچھ کر کے آج تک کیسے ہمارے ایئر فورس بیسز ہیں, ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ہماری سارے سلسلے ہیں, اور وہ اس صورتحال میں کہ جب ہماری ایئر فورس وغیرہ تھا سارے الرٹ رہتے تھے, کیونکہ یہ ان دنوں میں یہ طالبان والی مسئلے اور پاکستان امریکہ اور افغانستان ان سب کے تعلقات کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے, تو ایسی صورت میں کیسے ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے وہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اگر ان کو پتہ نہ ہوتا تو دیر شوڈ ہیو بین سم ری ایکشن, کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا, اس لیے یہ بے خبری میں لا علمی میں کچھ کر گزرتے اور یہ امریکی ہیلی کاپٹر یا مارتے یا ان کو یہ اٹمپٹ کرتے, لیکن چونکہ ان کو پتہ تھا تو انہوں نے بالکل شعوری طور پر سارے جو ہمارے راڈارز ہیں, ہمارے دوسرے جو انسٹرومنٹس ہیں, ہماری جو مشینری تھی ان ہیلی کاپٹرز کو ریسپونڈ کرنے کے لیے, اس ساری مشینری کو خاموش کیا گیا تھا اور وہ بہت آرام سے آئے اور وہاں سب کچھ کر کے اس کے بعد وہ چلے گئے.
بالکل آفریدی صاحب, ایک اور نقطہ جو سیمور ہرش نے اٹھایا اور انہوں نے ذکر کیا ایک ڈاکٹر عبدالعزیز کا جن کو امریکنز نے استعمال کیا تاکہ وہ پتہ کریں کہ واقعی اسامہ بن لادن یہاں رہتے ہیں ابٹ آباد میں یا نہیں. آپ کیل میں ہیں کہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا تھا, اور سیمور ہرش نے کہا کہ ان کو اس کے عوض کوئی $25 million بھی ملے. تو یہ بتائیے کہ یہ جو شکیل آفریدی ہیں اس کا مطلب ہے انہیں تو کچھ بھی نہیں ملا.
ویسے امریکیوں کی ایک لکھی ہوئی کتاب جو مجھ سے کوئی دوست لے گیا, اس میں کچھ بعض ڈالرز کا ذکر ہے کہ شکیل آفریدی کو اس قدر ڈالر ملے ہیں, دے پرہیپس ہیمرٹن کے $2.9 million ان کو ملے ہیں, لیکن بظاہر شکیل کے فیملی میں, شکیل کے بھائیوں میں, شکیل کے رہن سہن میں وہ چیز ہمیں کوئی نظر نہیں آئی کہ اس کو یہ ڈالر ملے ہیں. البتہ یہ ایک کتاب چھپی ہے 2014 میں, اس میں یہ لکھا گیا ہے.
جی جی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستانی حکومت کا اور دفتر خارجہ کا جو اس پر رد عمل آیا ہے وہ پورے سچ کو ظاہر نہیں کرتا؟
میں تو سمجھتا ہوں گزشتہ 10 سال میں پاکستانی, 10 نہیں بلکہ 10 سے زیادہ عرصے کے لیے طالبان سے ریلیٹڈ ایشوز پہ, القاعدہ سے ریلیٹڈ ایشوز پہ پاکستانی ایجنسیوں کا اور پاکستانی فارن آفس کا اور پاکستانی حکام کا جو رد عمل اور ان کے جو بیانات ہیں وہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہیں, وہ بالکل درست نہیں ہیں.
اچھا اچھا, بہت شکریہ آفریدی صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مشتاق یوسفزئی, آپ 2-3 منٹ اور ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی کچھ کہیں اس پر, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے UrduVOA.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, UrduVOA.com.
آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں اور موضوع ہے یمن اور سعودی عرب. اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب سے ہمیں ایک صاحب جوائن کریں جو کہ پاکستانی اٹیشے ہیں, لیکن ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف, ڈاکٹر زبیر اقبال جو واشنگٹن ڈی سی میں ہیں. اور ڈاکٹر زبیر, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو
سب دم کر
तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो कैंप डेविड की जो है मीटिंग हो रही है और जिसमें गल्फ़ के जो ममालिक हैं वो शरीक हो रहे हैं, बताया ये जाता है कि ये ज़्यादा सीनियर लेवल के लोग नहीं हैं, हालांकि सदर ओबामा चाहते हैं कि एक हिकमत अमली बने मिडल ईस्ट के लिए। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत कितनी कामयाब रही है, यानी अमरीकी सरकार कितनी कामयाब रही है अपनी मशरक़ वस्ता पॉलिसी में?
देखिए, हर मुल्क की अपनी जो पॉलिसीज होती हैं वो बदलती रहती हैं, क्योंकि अपना उनका इंटरेस्ट होता है, अपने इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए वो पॉलिसीज को बदलते रहते हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट पिछले तीन चार साल में बदल गया था। आपको याद होगा कि अमेरिका का पिवट ईस्ट एशिया की तरफ हो गया था, जिसकी वजह से यकीनन दूसरे इलाकों में, खासतौर पर मिडल ईस्ट में, ज़रा अहमियत कम दी जा रही थी। उसकी और वजूहत भी थी, जिसमें ऑयल की कीमत भी थी और ऑयल की सेल्फ सफिशिएंसी अमेरिका में जो है उसकी वजह से भी वहाँ की अहमियत कमज़ोर हो गई थी। उसके साथ साथ जहाँ तक फलस्तीन का मामला था वो बहुत दूर होता चला जा रहा था, इसलिए वहाँ से फोकस बदलता जा रहा था। लेकिन जो दूसरी फोर्सेस और जो दूसरे इवेंट्स पैदा हुए, जिसमें यमन शामिल है, जिसमें इराक शामिल है, जिसमें ISIL शामिल है, जिसमें सीरिया शामिल है, उसकी वजह से अमेरिका को अपनी पॉलिसीज को दोबारा एडजस्ट करना पड़ा और प्रायोरिटीज को नया रिवीजन देना पड़ा। उस रिवीजन को देखते हुए ये जो इस वक्त समिट हो रही है, जिसकी उम्मीद की जाती है, उसका मकसद ये था कि दोबारा रिफोकस किया जाए अमरीका की पॉलिसी टूवर्ड्स दैट रीजन।
अच्छा,
मुश्किल आ जाती है कि आया वो ममालिक इस काबिल हैं कि वो अमेरिका की रिवाइज पॉलिसी के साथ चलने के काबिल होंगे कि नहीं, ये अभी कुछ नहीं कह सकते।
अच्छा जी, इस वक्त हम सऊदी अरब चलते हैं, जहां पाकिस्तानी अटैशे तहसीमुल हक हक्की लाइन पर हैं। और हक्की साहब, आपको खुशामदीद।
शुक्रिया, बिल्कुल।
तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जो यमन की सूरत हाल है वो सऊदी अरब पर किस अंदाज में असर अंदाज हो रही है, और वहाँ जो पाकिस्तानी हैं उनकी क्या सूरत हाल है?
देखें, सऊदी अरब का जहाँ तक ताल्लुक है तो सऊदी अरब का एक रीजन है नजरान रीजन, जो बॉर्डर एरिया है यमन का, यहाँ पर कुछ थोड़ी डिस्टर्बेंस है। यहाँ पे पिछले वन वीक से, एक हफ्ते से यहाँ पर जो है मिसाइल फायर हो रहे थे यमन से, यमन जो माउंटेन्स हैं वहाँ से जो हुसी जो है वो फायर कर रहे थे। यहाँ पर कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं, कुछ लोग एक्सपायर भी हुए हैं, जिसमें से एक पाकिस्तानी भी एक्सपायर हुआ था। यहाँ पे जो लेबर था, यहाँ पे काम करता था, उसका नाम मोहम्मद आरिफ था, तो उसकी लोकल यहाँ पे उसको तस्कीन कर दी है उसकी यहाँ पे। और सऊदी अरब का जो रीजन है नजरान रीजन, यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है तकरीबन 12,000 के करीब पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पे।
अच्छा।
जो मुख्तलिफ जगहों पे जॉब्स करते हैं यहाँ पे, तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं, और दीगर जो कम्युनिटी के लोग हैं जो यहाँ पर फॉरनर्स हैं वो भी डिस्टर्ब हैं यहाँ पे। तो मैं वहाँ से जद्दा से यहाँ पहुँचा हूँ, 1100 किलोमीटर दूर है, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पे उन्होंने बंद किया हुआ है ना, नजरान एयरपोर्ट। तो बाई कार मैं यहाँ पहुँचा हूँ, कल शाम में यहाँ पहुँचा था, और यहाँ पे कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे मेरी मुलाकातें हुई हैं, और उनको वो काफ़ी डिस्टर्ब थे, परेशान थे यहाँ पे। लेकिन बहरहाल हमने उनको ये कहा है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और हमारे एम्बेसडर साहब मंजूर उल्लाह साहब हैं और कौनसल जनरल आफ्ताब खोकर साहब हैं, हमारी पूरी टीम जो है वो अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ी हुई है यहाँ पे, और खुदा ना खास्ता भी कोई सूरत हाल अगर मजीद ख़राब होती है तो फिर इंशाल्लाह सऊदी गवर्नमेंट से हम रास्ते में और यहाँ से इनको हम सेफ एग्जिट इंशाल्लाह करवाएंगे।
अच्छा, आपके इल्म में है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अप्रोच किया था कि कुछ वहाँ फौजें भेजी जाएं, इस हवाले से आपने क्या देखा, क्योंकि पाकिस्तान आप जानते हैं खुद अपने मसलों में घिरा हुआ है, इसकी वजह से कोई सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब तो नहीं हुए?
नहीं, सऊदी अरब से पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है पाकिस्तान की, और आप लोगों को शायद जो हमारे नाज़रीन हैं और जो लोग हैं उनको इस बात का इल्म है यकीनन कि पाकिस्तान की और सऊदी अरब की एक बहुत एक हिस्ट्री है एक ताल्लुकात की, और सऊदी अरब से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी आर्मी के जो लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मक्के में हैं, नजरान में, मुख्तलिफ जगहों पर जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब ये जहाँ तक ताल्लुक है, अभी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी यहाँ विजिट किया था, और आर्मी चीफ हमारे जनरल राजीव शरीफ साहब भी आए थे, और उन्होंने यहाँ पे आके जो है मुलाकातें की थी, और उसके बाद जो है सूरत हाल काफ़ी जो है वो बेहतर हुई है।
अच्छा जी, हम चलते हैं डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल की तरफ जो मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुहक्किक हैं, यहाँ वाशिंगटन डीसी में हैं। डॉक्टर ज़ुबैर, ये बताइए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ज़्यादा सीनियर लेवल के लोग नहीं आए हैं, तो उसकी वजह से ओबामा इंतज़ामिया ने क्या महसूस किया?
देखिए, हुआ ये था कि जब ये समिट तैयार की गई थी तो उस वक्त उम्मीद देखी जाती थी कि तमाम जो बेसिक कंटेंशियस इश्यूज हैं उनको पहले हल कर लिया जाएगा, और जब समिट होगी तो फिर वो एक फाइनल किस्म का वर्डिक्ट और एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो जाएगा। क्योंकि वो इस किस्म की जो डिटेल्स थी वो कामयाब नहीं हुई, उन पे अंडरस्टैंडिंग्स पैदा नहीं हुई, तो इसलिए इस समिट को भी एक खास समिट के तौर पर नहीं देखना चाहिए, इसको एक वर्किंग इवेंट देखना चाहिए, ये एक वर्क इन प्रोग्रेस होना चाहिए। इसका मकसद ये होगा कि वो जो डिस्प्यूट्स और जो डिफरेंसेस हैं जो पहले हल नहीं हुए थे उनको हल करने के लिए ऑप्शन सोची जाए और उन पर कोई फैसला किया जाए। जब वो फैसला हो जाएगा तो फिर उम्मीद ये होनी चाहिए कि एक और नई समिट होगी जो इन फैसलों को रेटिफाई कर देगी और उसकी वजह से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी अमेरिका और जीसी का ममालिक दरमियान, जो अभी पैदा नहीं हुई। तो इसीलिए अब मुश्किल ये आ जाती है कि आया ये एक सही तरीका है जिसके तहत ये सॉल्यूशंस किए जाएं, या इस समिट के बाद एक और वर्किंग ग्रुप हो जो फिर दोबारा एक बेसिस बनाए जिस पे एक समिट पैदा की जाए। उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये जो मीटिंग्स होंगी इनमें कुछ डिस्प्यूट्स जो अभी कायम हैं जिन पे अभी सेटलमेंट्स नहीं हुई वो रिजॉल्व हो जाएंगे। जब वो रिजॉल्व हो जाएंगे तो फिर सॉल्यूशन पैदा करने के लिए एक जो कहना है ग्रैंड डिजाइन का एक जो जो एक अरेंजमेंट होगा या एग्रीमेंट होगा वो पैदा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक ट्रीटी होगी लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होगी जिसको तमाम पार्टिसिपेंट पहचानेंगे, समझेंगे और फिर उसकी बेसिस पे नई पॉलिसी बनाई जाएगी।
डॉक्टर ज़ुबैर, आप भी जानते हैं कि अमरीका और ईरान एक जौहरी मुआहदा करने जा रहा है और बताया जाता है कि जून की आखिर तक ये हो जाएगा, तय पाएगा। क्या इसकी वजह से ये जो इस वक्त बातचीत चल रही है सऊदी और जीसीसी के ममालिक के दरमियान, क्या ये मुआहदा उसमें हायल होगा?
वो यकीन, देखिए ये समिट जो थी मैंने इसको पहले इसलिए जान के नहीं कहा था क्योंकि ये अभी जिसे कहना चाहिए ये एक ऑन गोइंग ऑपरेशन है। यकीन ईरान और ईरान की जो पोजीशन है वीज़ावी जीसीसी ममालिक वो एक सबसे अहम बेसिस है जिसकी बेसिस पे ये समिट होनी थी। याद रहे कि जब ईरान के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसके दो असरात होंगे, एक तो ये कि सैंक्शन खत्म हो जाएंगी और उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज ब्लॉक हुई हुई है, फॉरन रिसोर्सेज जो ब्लॉक हुई हुई है वो फ्री हो जाएगी। जैसे वो फ्री होती हैं ईरान की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पोजीशन बढ़ जाती है। अगर वो बढ़ जाती है और अगर ईरान के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर यकीनन ईरान अपनी सपोर्ट हासिल करने के लिए इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आप जानती हैं कि जहां तक सीरिया का ताल्लुक है ईरान ने $10 बिलियन पर ईयर के हिसाब से पिछले दो साल में वहां इस्तेमाल किए हैं असाद गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। अगर उनकी रिसोर्सेज बढ़ जाती हैं तो वो सपोर्ट करने के काबिल और हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंस नहीं रहता। इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये जो एग्रीमेंट होगा इस एग्रीमेंट के बाद रीबैलेंसिंग जो की जाएगी जीसीसी और ईरान के दरमियान वो कैसे होगी। आपको याद है कि 1979 से पहले ईरान और सऊदी अरेबिया को दो पिलर समझा जाता था जिसके बेसिस पे अमरीकी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती थी, लेकिन चूंकि ईरान उसके बाद उस
जी डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल की लाइन कट गई लेकिन हमारे प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म हुआ। हमारे साथ थे मशरक़ वस्ता के मुहक्किक डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल जो कि डीसी में होते हैं, और उनके साथ थे पाकिस्तान के अटैशे सऊदी अरब में तहसीमुल हक हकी। बहुत शुक्रिया और ख़ुदा हाफिज़। और इससे पहले आपने सुना लतीफ़ आफरीदी को जो कि शकील आफरीदी के वकील भी रहे हैं। उससे पहले थे हमारे साथ सियासी तज्ज़ियाकार मुश्ताक यूसुफ़ज़ई जो पेशावर में होते हैं। और इब्तिदा में इस प्रोग्राम में आपने सुना दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर मोहम्मद साद को, उनके साथ थे ईदी के तर्जुमान अनवार काजमी। इस प्रोग्राम के लिए हमारे इंजीनियर्स थे मार्टिन क्रोसियस और जैक्सन विट, प्रोड्यूसर्स अरसलान शरीफ और अरीशा खान, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa۔ ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com۔